आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि कुमार और प्रस्तुत है 22 दिसंबर 2025 के मुख्य समाचार। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस ने बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद राज्य में हेट स्पीच कानूनों में सुधार के संकेत दिए हैं। सरकार ने आज प्रस्तावित बदलावों की समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति को भेज दिया है। प्रीमियर मिंस का कहना है कि वे खास तौर पर ग्लोबलाइज द इंतिफादा जैसे नारों पर सख्ती बरतना चाहते हैं, जिन्हें कुछ फिलिस्तीनी समर्थक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और विरोध का प्रतीक बताते हैं, जबकि कई यहूदी संगठनों का कहना है कि यह यहूदियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है। मिंस ने कहा कि बोंडाई बीच पर 15 निर्दोष लोगों की मौत इस प्रकार के नारों का ही नतीजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने नियम हैं और समाज को जोड़ कर रखना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद न्यू साउथ वेल सरकार द्वारा प्रस्तावित नए प्रदर्शन नियंत्रण कानूनों के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि उन्हें गलत तरीके से इस्लामिक आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रीमियर क्रिस मिंस का कहना है कि फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में कुछ यहूदी विरोधी बयानबाजी सामने आई है और ये रैलियां ऐसे तत्वों को बढ़ावा दे रही है जिन्हें आयोजक रोक नहीं पा रहे हैं। हालांकि सिडनी में साप्ताहिक प्रदर्शन आयोजित करने वाले पैलेस्टाइन एक्शन ग्रुप के जोश लीज इससे असहमत हैं। उनका कहना है कि जो लोग इन प्रदर्शनों को यहूदी विरोधी बताते हैं उन्होंने कभी इन रैलियों को देखा ही नहीं है। जोश लीज ने यह भी बताया कि बोंडाई हमले के बाद हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए उनके समूह ने फिलहाल अपने प्रदर्शनों को रोक दिया है। दूसरी तरफ विक्टोरिया सरकार ने राज्य में यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने के लिए कई नए कदमों की घोषणा की है। इन प्रस्तावों में पुलिस के पास विरोध प्रदर्शन को रोकने की शक्तियां, राजनीतिक उग्रवाद पर रोक, राष्ट्रीय कैबिनेट के कड़े हथियार कानूनों को लागू करना और राज्य के यहूदी समुदाय के जीवन में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए विक्टोरिया के वरिष्ठ लोगों की एक परिषद का गठन करना शामिल है। प्रीमियर जैसिंटा एलन का कहना है कि यह 5 सूत्रीय योजना मौजूदा हेट स्पीच कानूनों को और मजबूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इजरायल और उसकी नीतियों की आलोचना करना वैध है, लेकिन मध्य पूर्व के संघर्ष का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में नफरत फैलाने के लिए नहीं किया जा सकता। प्रीमियर ने जोर देकर कहा कि सरकार किसी भी तरह की नफरत और उग्रवाद को बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं कोएलिशन ने ऐलान किया है कि संसद के दोबारा शुरू होते ही वह बोंडाई आतंकी हमले और व्यापक रूप से यहूदी विरोधी घटनाओं की जांच के लिए एक फेडरल रॉयल कमीशन गठित करने की मांग करेगी। प्रधानमंत्री अब तक विपक्ष और यहूदी समुदाय के नेताओं की इस मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समीक्षा और एक राष्ट्रीय गन बायबैक योजना की घोषणा की है। सोमवार सुबह विपक्ष की नेता सुजन ली ने अपने शैडो कैबिनेट के साथ प्रस्तावित जांच के दायरे को सार्वजनिक किया। शैडो अटॉर्नी जनरल एंड्रयू वॉलेस ने कहा कि जांच में कट्टर इस्लामी उग्रवाद के साथ साथ आप्रवासन नीति की भी समीक्षा जरूरी है। दूसरी तरफ फेडरल सरकार ने घरेलू गैस आरक्षण योजना की घोषणा की है जो आज 22 दिसंबर से होने वाले नए गैस अनुबंधों पर लागू होगी। इस योजना के तहत गैस निर्यात करने वाली कंपनियों को अपने उत्पादन का 15-25% घरेलू बाजार के लिए आरक्षित रखना होगा। ऊर्जा मंत्री क्रिस बोयन का कहना है कि योजना का विस्तृत स्वरूप उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से परामर्श के बाद तय किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना ऊर्जा सुरक्षा और कीमतों को स्थिर रखने में मदद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में अमेरिकी सरकार विदेशों में तैनात अपने लगभग 30 वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुला रही है, जिनमें प्रशांत क्षेत्र में नियुक्त अधिकारी भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन ने कम से कम 29 देशों में अमेरिकी मिशन प्रमुखों को सूचित किया है कि उनका कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें वाशिंगटन लौटकर विदेश सेवा की अन्य भूमिकाओं में तैनात किया जा सकता है। ये सभी राजनयिक बाइडेन प्रशासन के दौरान नियुक्त हुए थे और ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में हुई शुरुआती छटनी से बच गए थे, जो मुख्य रूप से राजनीतिक नियुक्तियों पर केंद्रित थी। माना जा रहा है कि अब प्रशासन ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना चाहता है जो राष्ट्रपति की तथाकथित अमेरिका फर्स्ट नीतियों के पूरी तरह समर्थक हों। अब खबरें भारत से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वे यह जांच करें कि बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंडों या शेयरों में उनकी कोई बगैर दावा की गई रकम तो नहीं पड़ी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय प्रणाली में 1.84 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी निष्क्रिय रकम मौजूद है जिसे उसके असली हकदारों तक पहुँचाने के लिए आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने, दावा प्रक्रिया को आसान बनाने और डिजिटल पोर्टलों के जरिए लोगों को अपनी रकम वापस दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लोग अपने बैंक खाते भूल जाते थे या कई बार उनका KYC विवरण पूरा नहीं होता है। कई ऐसे मामले हैं जिसमें खाताधारक की मृत्यु के बाद उनके द्वारा नामांकित व्यक्तियों को उस खाते या रकम की जानकारी नहीं होती है। इसी के साथ 22 दिसंबर के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।